हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं अमन मैनेजर को आंशी की ज़रूरत का सारा सामान लाने का बोलकर खाने के साथ ऊपर पहुँचा। आंशी अकेले बोर हो रही थी तो उसने टाइम पास के लिए पूरा घर अच्छे से देख लिया। ऊपर आने से पहले विधिक ने फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा कि आंशी ने उसकी एब्सेंस में क्या किया। घर के अंदर जाने से पहले विधिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने सारा घर अपने आप देख लिया, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे क्या फ़ायदा इस जगह को इतना गौर से देखने का, कौन सा हमें यहाँ पर ज़िंदगी बितानी है। आंशी और अमन की टीम इस बात से बेखबर थी कि विधिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो आंशी को यहाँ नहीं रखने वाला था, बस कुछ दिनों के लिए वो उसे यहाँ लेकर आया था। विधिक खाने के साथ अंदर पहुँचा तो आंशी बालकनी में थी, वो पौधों को पानी दे रही थी। विधिक के कदमों की आहट सुनकर आंशी समझ गई थी कि वही आया होगा। उसने मुस्कुराते हुए विधिक की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो गार्डनिंग पसंद नहीं है, फिर इतने सारे पेड़ पौधे किसने उगाए? मैं यहाँ नहीं रहता तो मेरी एब्सेंस में मेंटेनेंस वालों ने किया होगा। वैसे काफ़ी टाइम से इसी घर में हूँ, कुछ महीनों से शिवांगी मेरे साथ थी तो वो उनकी अच्छे से देखभाल करती थी, विधिक ने जवाब दिया। आंशी समझ गई थी कि वो दिव्याना को ही बार बार शिवांगी कहकर बुला रहा है, लेकिन साथ ही उसने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि दिव्याना और विधिक के बीच में थोड़ा बहुत बॉन्ड बन गया था, तभी वो बात बात पर उसका नाम ले रहा था। आंशी विधिक के पास आई और सर्विंग ट्रॉली को डाइनिंग टेबल के पास लेकर चली गई। वो खाना सर्व करते हुए बोली, तुम बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हो, कुछ ज़्यादा ही याद नहीं आ रही तुम्हें उसकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार? आंशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विधिक ने गुस्से में आंशी को पकड़कर अपने करीब कर लिया। विधिक के हाथ आंशी की कमर पर थे और गुस्से में उसकी पकड़ टाइट होती जा रही थी। आंशी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विधिक को आंशी के दर्द में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सर्द लहजे में बोला, सोच समझ कर बोलो बटरफ्लाई, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, अगर करता होता तो इस तरह तुम्हें ढूंढता नहीं। मेरी लाइफ में बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं, मुझे उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये कहने की कि मुझे उस एजेंट से प्यार हो गया था? दर्द से आंशी की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने नजरें झुकाकर कहा, सॉरी विधिक, मुझे पता नहीं था तुम बार बार उसका नाम लेते रहते हो तो मुझे लगा तुम दोनों के बीच कोई रिलेशन बन गया होगा। दोस्ती, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, मैं किसी को दोस्त बनाता था तो नहीं, लेकिन उसने बहुत इमोशनल कहानी बनाई थी। एक पल के लिए तो मैं उससे शादी करने के लिए ही तैयार हो गया, फिर मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। जो गलती तुमने की वो मैं कैसे कर सकता हूँ बटरफ्लाई, तुमने मेरी एब्सेंस में शादी तक कर ली, विधिक ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उसने अभी भी आंशी को उतना ही कस के पकड़ रखा था। आंशी ने नज़रें उठाई और नम आंखों से कहा, मैंने जानबूझकर शादी नहीं की थी, उस आदमी ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, मैं अपनी एजुकेशन के लिए वापस जाने वाली थी और अचानक से वो सब हो गया। बोलते हुए आंशी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर विधिक ने उसे छोड़ और अपने सीने से लगा लिया। विधिक ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और आंशी को सहलाते हुए कहा, रोना नहीं है बटरफ्लाई, तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, पर साथ ही ये भी नहीं कि हम दोनों की ही जिंदगी में कोई और आए, आगे से जब भी मेरा नाम लेना हो तो खुद के नाम के साथ ही लेना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब विधिक थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, लेकिन उसने आंशी को काफ़ी कस के गले लगा रखा था। आंशी इससे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर फिर भी वो जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने अपने मन में कहा, ये आज भी इतना ही खतरनाक है, ऊपर से बोलता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, गुस्से में किसी की भी हवा टाइट हो जाती है इसे इस तरह देखकर। विधिक आंशी को छोड़ नहीं रहा था तो उसने धीरे से कहा, विधिक मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। विधिक ने आंशी की बात पर हामी भरी और उससे अलग हो गया। आंशी उसकी और खुद की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। उसे काम करते देख विधिक को थोड़ी हैरानी हो रही थी। जब पहले आंशी विधिक के साथ रहती थी तब उसका हर छोटा काम विधिक को करना पड़ता था, यहाँ तक कि वो खाना भी उसे अपने हाथों से खिलाता था, और आज आंशी को खुद से खाना सर्व करते देखा तो उसे हैरानी हुई। बटरफ्लाई, तुम काम कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, विधिक ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बहुत काम करना आना तो ज़रूरी होता है ना, तो सीख लिया। विधिक ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे क्योंकि विधिक को खाना खाते हुए बात करना पसंद नहीं था। आंशी का मूड ऑफ होने की वजह से वो चुप थी, वरना वो विधिक की कहाँ सुनती थी। खाना हो जाने के बाद विधिक उठ कर गया। वो दो मिनट बाद वापस लौटा और उसके हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन था। वो आंशी के पास आया। आंशी को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि तभी अचानक विधिक उसके पास आया और उसकी गर्दन में इंजेक्शन घोप दिया। अगले ही पल आंशी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो नीचे गिरती उससे पहले विधिक ने उसे थाम लिया और उसके चेहरे पर ईवल स्माइल थी।